नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के दौरान कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के 2100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली एआई इनोवेशन पवेलियन का दौरा किया। कहा, राजधानी के विद्यार्थियों द्वारा विकसित एआई नवाचार शिक्षा के भविष्य को आकार दे रहा है। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ बैठक कर जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा ढांचे को और मजबूत करने पर चर्चा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ये नेता भारत एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्पेन के राष्ट्रपति पेद्रो सांचेज से भेंट की। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं ने भारत स्पेन साझेदारी को और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार और अर्थव्यवस्था, डिजिटल नवाचार, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने भारत यूरोपीय संघ के मजबूत रिश्तों के लिए स्पेन के निरंतर समर्थन की प्रशंसा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने भारत स्पेन की मित्रता को बढ़ावा देने पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि दोनों ही देश वर्ष 2026 को भारत स्पेन संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री आंती पेत्री ओर्पो से भी बातचीत की। उन्होंने सतत विकास और डिजिटलीकरण, एआई अनुसंधान और नैतिक नवाचार में सहयोग पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने एआई के क्षेत्र में उभरते नवाचार के रूप में फिनलैंड के प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर वुचिच से भी बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्शाज बेतनोफ के साथ भी वार्ता की। दोनों ही नेताओं ने व्यापार, रक्षा और सुरक्षा संपर्क, ऊर्जा उभरती प्रौद्योगिकियों और लोगों के बीच आपसी रिश्तों समेत सभी देशों में क्षेत्रों में महत्वपूर्ण साझेदारी को और सुदृढ़ करने और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की है। श्री मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री दाशो छेरिंग तोबगे के बीच हुई वार्ता में दोनों नेताओं ने ऊर्जा, संपर्क, विकास साझेदारी और लोगों के बीच आपसी संबंधों के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने विश्वास, सद्भावना और आपसी सम्मान पर आधारित भारत भूटान साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई से भी भेंट की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने एआई के क्षेत्र में भारत के कार्यों और इस क्षेत्र में भारत के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों तथा पेशेवरों के साथ गूगल के काम करने की संभावना के बारे में चर्चा की है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दिल्ली एआई इनोवेशन पवेलियन का दौरा किया। श्री सूद ने कहा कि राजधानी के विद्यार्थियों द्वारा विकसित प्रेरणादायक एआई नवाचारों का प्रदर्शन शिक्षा के भविष्य को आकार दे रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार एआई पर आधारित प्रगति, युवा प्रतिभा और कक्षाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के तीसरे दिन की शुरुआत अनुसंधान संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह से हुई। इसका उद्घाटन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के तीसरे दिन रिसर्च संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए एआई पर मजबूती से ध्यान दे रहा है। उन्होंने बताया कि देश एआई के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है ताकि उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके और स्वास्थ्य, कृषि तथा जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
वी इन इंडिया आर वेरी फोकस्ड ऑन एआई।
भारत एआई पर ध्यान केंद्रित कर रहा है है, हम उद्यमों की उत्पादकता में सुधार, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, जलवायु परिवर्तन जैसी वास्तविक दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए एआई के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और ये एआई शिखर सम्मेलन इसके लिए एक उचित अवसर है।
And this AI summit brings that opportunity.
वहीं श्री वैष्णव ने घोषणा की कि भारत ने AI समिट में AI जिम्मेदारी अभियान के अंतर्गत 24 घंटे में सबसे अधिक संकल्प प्राप्त करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिन निर्णायक प्रवीण पटेल ने कहा कि यह भागीदारी शुरुआती 5,000 शब्दों के लक्ष्य से कहीं अधिक रही। इस बीच सरकार ने इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो को एक दिन बढ़ाकर इस महीने की 21 तारीख तक कर दिया है। यह फैसला प्रदर्शकों, नवाचारकर्ताओं और आगंतुकों की भारी प्रतिक्रिया को देखते हुए लिया गया है। रोहन और शिवांग के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वैश्विक स्वास्थ्य में एआई पर भारत फ्रांस परिसर का उद्घाटन किया। ये पहल वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये परिसर एआई आधारित स्वास्थ्य समाधानों में अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा, अकादमिक उत्कृष्टता और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को प्रोत्साहित करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड की लगभग 2100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये कार्य राजधानी में बेहतर जल आपूर्ति, मजबूत आधारभूत ढांचे और नागरिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस परियोजना के तहत 990 करोड़ रुपए की लागत से टोडापुर, राजेंद्र नगर, नारायणा और इंद्रपुरी जैसे क्षेत्रों में पानी की नई पाइपलाइंस बिछाने का काम किया जाएगा।
पूरी दिल्ली के लिए, विशेष रूप से इस राजेंद्र नगर विधानसभा के लिए, आपकी आसपास की सभी विधानसभाओं के लिए, क्योंकि हमारे जल मंत्रालय ने, हमारे जल मंत्री भाई प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी ने इस पूरे क्षेत्र को इस कम समय में वो सौगात दी है जिसके लिए हमारा ये क्षेत्र वर्षों से तड़प रहा था पानी की कमी के कारण।
दिल्ली जल बोर्ड ने आज बताया कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई के कारण राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में 20 और 21 तारीख को जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। एक रिपोर्ट।
जल बोर्ड के अनुसार सेक्टर D2 वसंत कुंज, छतरपुर, मध्य भाग, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, देश बंधु अपार्टमेंट, नेहरू प्लेस और हरकेश नगर क्षेत्रों में 20 तारीख को पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। वहीं 21 तारीख को किशनगढ़ गांव, जूनापुर, अमृतपुरी गढ़ी, संजय कॉलोनी और ओखला फेज 2 के आसपास के इलाके प्रभावित रहेंगे। जल बोर्ड ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से पहले से पानी जमा कर लें। पानी के टैंकर टेलीफोन नंबर 1916 पर उपलब्ध रहेंगे। दृष्टि की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं प्रशांत कुमार।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC के साथ एक समीक्षा बैठक की। श्री सिरसा ने बताया कि बैठक के दौरान राजधानी में जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा ढांचे को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और वैज्ञानिक निपटान आवश्यक है। श्री सिरसा ने कहा कि इससे जुड़े नियमों का सख्त अनुपालन, समय पर कचरा संग्रहण और सुदृढ़ निगरानी तंत्र को सुनिश्चित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में एक नई स्मारिका दुकान का शुभारंभ किया। इसमें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और उनके विचारों से प्रेरित चुनिंदा स्मारिकाएं, पुस्तकें, हस्तनिर्मित उत्पाद और अन्य वस्तुएं भी प्रदर्शित की गई हैं और विक्रय के लिए रखी गई हैं। डॉक्टर कुमार ने कहा कि भारत की कलात्मक परंपराओं की रक्षा और संवर्धन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास कारीगरों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in www.sai.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। ये दो दिन का सम्मेलन भारत और मंगोलिया के बीच 70 सालों के राजनयिक संबंधों के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि मंगोलिया एक कंजूर, जो मंगोलिया का महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है, वो दोनों देशों की साझा सभ्यता और आध्यात्मिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है, जिसकी जड़ें नालंदा और भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराओं में निहित हैं। कार्यक्रम में भारत में मंगोलिया के राजदूत गनबोल्ड दम्बाजाव और बौद्ध भिक्षु भी उपस्थित थे। इस सम्मेलन में भारत और मंगोलिया के ऐतिहासिक, धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया गया। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खीरवार ने आज गाजीपुर लैंडफिल स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चल रहे सुधार कार्यों की गति और गुणवत्ता का आकलन भी किया। श्री खीरवार ने तत्काल प्रभाव से जैव खनन कार्यों को बढ़ाने, उपकरणों और जनशक्ति की तैनाती को अनुकूलित करने तथा समयबद्ध परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए एक दैनिक प्रदर्शन ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। नगर निगम ने कहा है कि वो वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आज भोपुरा बॉर्डर से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 1.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 7.5 करोड़ रूपये है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली नगर निगम दक्षिणी क्षेत्र ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया। फ्रॉम सेग्रीगेशन टू जीरो वेस्ट एक्शन वर्कशॉप शीर्षक से आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना था। कार्यक्रम के दौरान जीरो वेस्ट कॉलोनियों और जीरो वेस्ट संस्थानों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी किए गए। दिल्ली ओपन टेनिस प्रतियोगिता के दौरान दिल्ली लॉन टेनिस संघ ने भारतीय टीम को सम्मानित किया है। संघ ने भारतीय टीम को डेविस कप में नीदरलैंड्स पर शानदार जीत दर्ज करने पर सम्मानित किया। भारत ने इस महीने की शुरुआत में बेंगलुरु में एक रोमांचक मुकाबले में 6 रैंकिंग वाली नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर सितंबर में होने वाले क्वालिफायर के दूसरे दौर में जगह बना ली थी। दिल्ली ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में कल नितिन कुमार सिन्हा और एसडी प्रज्वल देव का मुकाबला प्रुचिया इसारो और निकी कालियंडा पुनाचा से होगा। ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला दोपहर 2:40 पर शुरू होगा। T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 11वें ओवर में 3 विकेट पर 75 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। वहीं पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रन से हराकर सुपर 8 में जगह बना ली है और दक्षिण अफ्रीका ने आज ग्रुप डी के मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात को 6 विकेट से हरा दिया। राजधानी में आज हल्की बारिश का अनुभव किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आज का अधिकतम तापमान रहा 21.3 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। विभाग के अनुसार कल सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जा सकता है 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना ग्रैप के द्वितीय चरण को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के 2100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली एआई इनोवेशन पवेलियन का दौरा किया। कहा, राजधानी के विद्यार्थियों द्वारा विकसित एआई नवाचार शिक्षा के भविष्य को आकार दे रहा है। और इसके साथ ही ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।